ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप में से कितने भाई बहन हैं जो पहली बार इस क्लब में मधुबन में आए हैं? जरा हाथ उठाएंगे। ठीक है, प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर अलौकिक दिव्य ईश्वरी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई है। बहुत काल तक 18 जनवरी 1969 तक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से साकार रूप में बिना किसी नागा के हमको पढ़ाई करवाई। उसके बाद 1969 से लेकर आज तक 18 जनवरी 1969 से लेकर और 21 नहीं तो 20, आज भी मुरली तो सुनी है, 21 मार्च 2017 तक अब भी बाबा हमको लगातार बिना नागा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और उसमें साकार की मुरलियां भी होती हैं, अव्यक्त मुरलियां रिवाइज भी होती हैं और नई अव्यक्त मुरलियां भी होती हैं, ताकि बच्चों को रोज निरंतर पढ़ाई मिलती रहे और वो अपनी संपन्नता को पाए। अब जैसे जैसे समय घटता जाता है, समीप होता जाता है, बिल्कुल ही समाप्ति पर आ जाता है, तो उसी अनुसार बाबा कल्याणकारी अपने बच्चों का हित देखते हुए पढ़ाई को अनुभव कराने के लिए भी, जिसको कहते हैं पढ़ाते हैं, जैसे साइंस की पढ़ाई होती है दुनिया में, तो साइंस की पढ़ाई के अंदर पढ़ाई भी होती है लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं कि जो कुछ पढ़ा है उसको करके देखो। वो तो दुनिया की साइंस है लेकिन जो ईश्वरीय विज्ञान है उसमें भी बाबा पहले हमको पढ़ाया कि आप खुद पढ़ो और एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि ये पढ़ाई जीवन में लाने की है। दुनिया की पढ़ाइयां नौकरी करने धंधा करने की होती हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ा तो डॉक्टरी करके अपना शरीर निर्वाह करते हैं। ये पढ़ाई अपने जीवन में लाने की है। तो कितने वर्षों तक बाबा ने रोज पढ़ाया कि तुम कर्म योगी हो, पढ़ाई पढ़ाई के लिए नहीं होती, काम में लाने के लिए होती है। योग योग के लिए नहीं होता, प्रयोग करने के लिए होता है। बाबा ने कराया। फिर जब अव्यक्त वाणियां शुरू हुई तो उसमें बाबा ने हमें, हम साकार लोक में हैं, बाप और दादा दोनों मिलकर अव्यक्त लोक में, सूक्ष्म लोक में से आकर यहां एक दूसरे माध्यम से, जिसको छोटा नदी गेन भी कहा जाता है, आकर के हमें भी अव्यक्त बनाने के लिए पढ़ाई कराई। आप देखेंगे आप कि साकार मुरलियां, बाबा कहते हैं सारा ज्ञान मैंने साकार मुरलियों में दिया, लेकिन उसको रिवाइन करके और अव्यक्त में आकर अव्यक्त बोल में, यानी बाबा की जो वाणी अव्यक्त मुरली की चलती है, उसमें बाबा की आवाज भी अव्यक्त रूप से निकलती थी। हमें बहुत वर्षों तक पढ़ाया। इतने वर्षों तक साकार में नहीं पढ़ाया जितने वर्षों तक अव्यक्त में पढ़ाया। बाबा कहते हैं मैं अव्यक्त हुआ इसलिए कि आगे बाबा नीचे आते थे साकार लोक में, अब बाप दादा अव्यक्त लोक से पढ़ाया ताकि हम भी अव्यक्त लोक का अनुभव करते करते पढ़े, रहें यहां लेकिन हम अव्यक्त लोक के अभ्यासी बने। उसके बाद बाबा ने पिछले 2 वर्ष तक हमको साकार में आकर यहां बैठकर हमको स्वयं अनेक प्रकार के एक्सरसाइज, जो अनुभूतियों के लिए ही थे कि बच्चे को डायरेक्ट बाबा आके पढ़ाकर एक्सरसाइज करवा के अनुभूति कराए। जैसे दुनिया के अंदर एक्सरसाइज करवाने वाले टीचर होते हैं फिजिकल, तो वो एक्सरसाइज सामने से करवाते हैं, हाथ ऊपर उठाओ तो सब हाथ ऊपर उठाते हैं, तो फिजिकल होता है। तो बाबा ने, काम तो हमारा है कि हम अव्यक्त बने, फिर भी नीचे आकर और उस एक्सरसाइज में अनेक प्रकार की पढ़ाई की एक्सरसाइज करवाई। कभी बाबा ने कहा कि 5 धाम की एक्सरसाइज करो, कभी बाबा ने कहा कि साकारी निराकारी की एक्सरसाइज करो, आप सुदर्शन चक्कर पांच धाम की यात्रा में सुदर्शन चक्कर भी आ जाता है और त्रिलोक भी आ जाता है, यानी हिस्ट्री भी आ जाती है और ज्योग्राफी भी आ जाती है, क्योंकि उसमें आपको तीनों लोकों की यात्रा होती है, उसके बाद चारों युगों की यात्रा होती है। तो तीनों लोकों की यात्रा बेहद की ज्योग्राफी और तीनों धामों की यात्रा, ये चारों युगों का सुदर्शन चक्कर, ये हिस्ट्री कि सतयुग में क्या था, संगम पर क्या था। बाबा ने उस यात्रा में कलयुग को छोड़ दिया कि कलयुग में तो आप रहते ही हैं, तो कलयुग की यात्रा तो नहीं करानी। ऐसे अनेक तरीके से बालक और मालक का, मनसा वाचा कर्मणा का यात्रा कराई ताकि बच्चे उसका अनुभव करें। एक होता है रेडियो सुनना, वो कान में सुनाई पड़ता है, उस रेडियो में भी कान में सुनते हैं। मान लो कोई बंबई की खबर आती है तो कान में सुनने के बाद बुद्धि बॉम्बे चली जाती है, लेकिन उसके बाद दुनिया में भी टेलीविजन आ गया कि देखो भी और सुनोगे भी। तो बाबा ने फिर हमको बोलकर बकायदा चाहे दो मिनट के लिए इस लोक में रहो, फिर इस लोक में आओ, ताकि हमारे को लोकों का भी अनुभव हो और मन को एकाग्र करने के लिए जहां का बाबा कहे वहां हम चले जाएं, फिर दूसरी जगह के खुद आकर के बच्चों को ड्रिल कराई। और बाबा कहते हैं देखो कहां का ऑलमाइटी गॉड, और बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल वाले को बच्चे को टीचर पढ़ाता है, वो ड्रिल कराई। अब समय और भी घट गया, अब तो आप समझिए कि पढ़ाई जो है, बाबा कहते हैं कि नए बच्चे आ रहे हैं उनके निमित्त मैं पुराने को भी रिवाइज करा देता हूं और नयों को भी पिछला भी सार में मिल जाए वो करता हूं। इस सीजन में ये जो अब चल रहा है जिसमें मुलाकातें भी घट गई हैं और जिसमें सबको स्पष्ट हो रहा है कि अब ये पढ़ाई जो है पूरी हो जाएगी, अब परीक्षा का समय, क्योंकि तो पढ़ाई के बाद क्या होता है परीक्षा, पढ़ाई में तो स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में क्या होता है, फिर जितना जितना पढ़ा उसके अनुसार फाइनल हो जाता है। तो अब क्योंकि आप सबके दिल भी कहते हैं कि आसार कैसे हैं, चारों तरफ के आसार और यज्ञ के भी आसार एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब पहले तो कहते थे अब घर जाना है, लेकिन अब तो सचमुच ही घर जाना है। इसलिए आप देखेंगे कि अब बाबा जो हमारी पुरुषार्थ की समय था उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ का समय था, उसके बाद उड़ती कला का समय था, अब बाबा कहते हैं कि वो था पीछे रहकर आगे को देखना कितना बाकी है। अब बाबा कह रहे हैं कि मंजिल यानी संपन्नता की जो हमारी स्टेज है उसका अनुभूति करा के बाबा हमको समझे कि लास्ट चांस दे रहे हैं कि हम अब भी मेकअप कर लें। तो आपने देखा अगर इससे पिछली बुरली कोई ले लें तो उसमें क्या था, उसमें बाबा ने माला का, मनका का, विजयी रतन का अच्छी तरह अनुभव कराया। और बाबा ने कहा कि लास्ट से लास्ट बच्चा भी मेरी माला में है और ये सत्य है कि मालाएं कई प्रकार की हैं लेकिन जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए वो किसकी माला में आ गए, वो विष्णु की माला में तो आ गए और बाकी आत्माएं जो दुनिया की हैं वो तो शिव की माला में ही रही। तो बाबा ने हमको फिर उसमें भी विजयी बनने का तरीका और जो लिमिट हम समझते थे कि 8 की माला है, 108 की माला है, ये बड़ी मालाएं हैं बढ़िया, उसके बाद 16,000 की है, फिर 9,00,000 की है, फिर 33 करोड़ की है, इत्यादि इत्यादि। तो कई बाबा के बच्चे अंदाजा लगा के कि 8 में तो ये आ जाएंगे, फिर और गिन के 108 में ये आ जाएंगे, फिर गिन के अपने आप को निराश कर लेते थे ये तो फिक्स है, जैसे कई ड्रामा को गलत समझ के फिक्स है तो निराश कर लेते हैं। तो बाबा ने उसको भी स्पष्ट कर दिया कि बच्चे तुम आओ किसी भी माला के अधिकारी बनो, मैं इस माला को लंबी कर दूंगा, भगवान खुद कह रहा है, ताकि बच्चे किसी ज्ञान की बात को हद में ना लाके अपना नुकसान ना कर लें। और ये जो कल मुरली चली है बाबा की ये भी उसी श्रृंखला में एक वंडरफुल मुरली चली है जो हमको हमारी ही स्टेज का पूर्व साक्षात करा के कार करा के। वैसे तो बाबा कहते रहे हैं कि बच्चे समय को समीप लाओ, समय को समीप लाओ। अब बच्चे कितना ला सकते हैं क्योंकि सामने दिखे कि ये मेरा स्वरूप है तो उसको अराइव करना, उसको पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपको कहें स्वरूप आपका वहां है, वहां भागकर दौड़कर उड़कर देखो आपका क्या स्वरूप है, तो इतना आसान नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा ब्राह्मण लाइफ भी खत्म, पुरुषार्थ की लाइफ भी खत्म, अब फिर कौन सी लाइफ है। तो बाबा ने बताया हुआ है कि सीधा कोई कलयुग से सतयुग में जंप नहीं लगा सकता। चक्कर में तो मोटे रूप से दिखाया गया है कि कलयुग से सतयुग आ जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को बाबा कहता है कि मैं और डिटेल में बताता हूं कि पहले क्या, पहले शूद्र संस्कार वाले सीधा देवता नहीं बन सकते। शूद्र संस्कार वाले को क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अच्छा, तो ब्राह्मण का भी पीरियड है कि शूद्र को फुल खत्म करके ब्राह्मण बन जाए उसका समय निश्चित है। फिर ब्राह्मण से क्या होगा, देवता बन जाएंगे? नहीं। बाबा ने कहा ब्राह्मण से फिर तुमको फरिश्ता बनना है। अच्छा, फरिश्ता बन गए तो देवता बन जाएंगे? नहीं। फरिश्ता से फिर तुम्हें अपने अनादि आत्म स्वरूप में जाना है, वहां से फिर तुमको देवता स्वरूप में आना। तो ये बीच की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे समय का पता लगता है, बच्चों को समय का पता बाबा ने दिया, दुनिया को नहीं है, वो तो सोचते हैं क्या होगा, लेकिन बताया कि ये कलयुग नहीं रहेगा। इसी प्रकार से घड़ी में क्या बजा है, तो एक तो घड़ी में होते हैं आवर्स, उसके बाद मिनट्स भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। अब दिन और रात कहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी सुबह होती है, दोपहर होती है, बहुत टुकड़े होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के साथ साथ चलना, सबसे बेस्ट जो समय से भी तेज चले, लेकिन ज्ञान समय से तेज चला सकता है। हमारी मतेश्वरी जी ने क्या किया, समय से तेज चली। कई तो कहते हैं समय तक भी चल लें तो ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए भी पता होना चाहिए कि इस समय मुझे क्या करना है, नहीं तो क्या होगा, या तो समय से आगे का आप सोचेंगे यही देवता बन जाएं, या पीछे के सोचेंगे कि हम अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। तो समय को जानना आवश्यक है, इसलिए बाबा ने क्या किया, अब हमको अनुभूति करानी शुरू की है कि जो हमारी स्टेज है उसको एडवांस लाके। यूं तो बाबा ने हमको शुरू में ही हमारी स्टेज को एडवांस लाके दिखाया, लेकिन फासला बहुत था। कहां साधारण मनुष्य, कहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फासला बहुत था। अच्छा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण से भी एक पूरा युग जाने के बाद श्री राम श्री सीता। तो बाबा जब पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो सब क्या कहते हैं, राम सीता कहते हैं। अभी भी बाबा कहता है किसी को पूछो राम सीता बनोगे, तो कोई होगा सभा में एक आध जिसको बेचारे को पूरा पता नहीं होगा, वो कहेगा मैं बनूंगा, क्योंकि राम सीता भी कोई साधारण बात नहीं है, राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, तो मोटे रूप से दिखाया। अब बाबा कहते हैं, मैं और सूक्ष्म करके बता रहा हूं कि चलो फाइनल मंजिल ना सही, नेक्स्ट स्टॉप का तो पता लगे कि इससे अगला स्टॉप हमारा कौन सा है, तब तो आसानी हो जाएगी ना। सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है, सार रूप में, लेकिन प्रेजेंटली वर्तमान समय हमें कहां पहुंचना है, वो बाबा ने कल हमको अनुभव करा के स्पष्ट करा के बताया कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है। नेक्स्ट स्टॉप क्या है, परम धाम, सतयुग, या फरिश्ता। जो कहते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप फरिश्ता है, वो जरा हाथ उठाओ। कुछ शक है, कोई और नेक्स्ट स्टॉप है? नहीं। तो इसलिए बाबा आए, तो बाबा ने क्या किया, निराकार भगवान जो दुनिया को बुद्धि में ही नहीं आता कि कभी हमें निराकार भगवान के साकार में दर्शन होंगे, नहीं आता। कल पहले भी नहीं आया था क्योंकि गुप्त वेश में आता है। फिर निराकार भगवान और उसके बाद हमारा आदि पिता जिसके हम परिवार हैं, ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर और फिर एक अन्य रथ में आकर बच्चों से मिल रहे हैं, ये वंडर ऑफ द वंडर नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं देखो मैं थोड़े समय के लिए आके ऑल माइटी हूं, बहुत लक्की सोल्स होंगे, पहले तो ब्राह्मण ही सारे लक्की, सारी दुनिया की आत्माएं इतनी करोड़ों आत्माएं शिव की संतान और हम थोड़ी सी आत्माएं किसकी संतान हैं? शिव की प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा साकार रूप में संतान जो अब से लेकर कलयुग के अंत तक साकार रूप में रहते हैं। अच्छा, उन दोनों को मिलने, फिर उसमें भी मिलने वाले कौन जो साकार में आके मिल रहे हैं, अनुभव तो वही करेंगे ना, बाकी तो सुनेंगे तो टीवी में देखेंगे, लेकिन टीवी में एक आप दृष्टि ले सकते हैं? आप बाबा यहां बैठ के आपको फरिश्ते की अनुभूति करा रहा है, टीवी में आप कर सकते हैं? नहीं। और फिर बाबा कहते हैं कि स्वयं आके बाबा ने क्या किया, जब बाबा आके यहां बैठ गए तो क्या हुआ, हम सब अपने शरीरों को शरीरों में थे, अपने शहर में थे, अपने शारीरिक नाम को याद कर रहे थे, जिस कमरे में आप रहते हैं वो याद कर रहे थे? नहीं। क्या था कि सबके सब बाबा को देख रहे थे, भले शरीर दूसरा था तो शरीर कोई देख रहा था कि हम गुलजार दादी को देख रहे हैं? नहीं। तो सब किसको देख रहे थे? बाबा को देख रहे थे। तो सबका ध्यान बाबा की तरफ था और क्या सोच रहे थे, क्योंकि हम सुनने के आदि हैं, बाबा के महावाक्य सुनने आए हैं, तो ये वेट कर रहे थे बाबा को देखकर, अभी बाबा कुछ बोलता है, अभी बाबा कुछ बोलता है। कल तो बाबा ने सबसे लंबी साइलेंस करवाई, कई बच्चे तो सोचने लग गए आज पता नहीं बाबा बोलेगा भी या नहीं बोलेगा है? अच्छा, लेकिन चाहे जाने चाहे अनजाने इसमें हमारा कल्याण क्या हुआ? कल्याण यह हुआ कि हम टेम्परेरीली तो विदेही बन गए। अच्छा, और बाबा हमारा निश्चय भी टेस्ट करता है, जो होगा सो होगा, अच्छा ही होगा। मान लो बाबा बिल्कुल भी नहीं बोलते तो भी ठीक था, बाबा ने इतने समय बाद बोला तो भी ठीक है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या बाबा कर रहा है, हमारी सारी अवस्था, सारा हमारा बीके का जीवन इस वक्त टेस्ट हो रहा है। ठीक। तो बाबा ने क्या किया, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, शास्त्रों में तो लिख दिया कि भगवान ने अपना रूप दिखाया, अर्जुन ने कहा हे भगवान बस करो, मुझे से आपका तेज नहीं देखा जाता है। अब आप सोचो कि माता पिता भी अपने बच्चे को तेज आग के समीप नहीं जाने देते, کہ بیچارے کو سیک لگ رہا ہے. تو کیا شیو بابا اپنا ایسا تیجسوی روپ دھارن کرے گا جو کہ دنیا کے وناش کے لیے رکھا ہوا, بچوں کو تھوڑی دھارن کرائے گا, اس کی بھی ضرورت ہے, پر یہاں تو نہیں ہے. تو بابا بالکل بالکل سادھارن بن کے جیسے ہم ہیں, سادھارن تن میں, وہ بھی جیسے ہمارا ہے, کسی گیروے سادھو کا بھی نہیں لے کر, بہت سمپل روپ سے ہمارے کو کیا سے کیا کر دیتے ہیں. تو بابا نے کیا کیا کہ ہم کو, ہم سب کا ایک فائنل روپ ہے کہ نہیں ہے, جس دن فل سٹاپ ہوگا اس دن ہمارا کوئی روپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا ضرور ہوگا, چاہے نمبر وار ہو, ہوگا. اچھا اب سوکشم لوک میں جب ہم جائیں گے, ہمارا نیکسٹ اسٹیشن ہے فرشتوں کی دنیا. جب ہم فرشتوں کی دنیا میں جائیں گے, جو اس میں پرویش کریں گے, انٹر کریں گے, تو ہمارا کون سا روپ ہوگا, آج والا ہوگا یا کچھ اور ہوگا, کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں جب ہم جائیں گے تو ہم بوڑھے جوان پینٹ والے دھوتی والے ہوں گے یا فرشتہ ہوں گے؟ میں جب فرشتوں کی دنیا میں جاؤں گا میرے عینک لگی ہوگی وہاں کہ نہیں لگی ہوگی, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے بابا کہتے ہیں کہ فرشتہ بننے میں کیا ہوگا, جس کو کہتے ہیں فرشتہ کا جس کا اس دنیا سے کوئی رشتہ نہیں, فرش سے جس کا فرش سے نہیں کوئی رشتہ, وہ ہے فرشتہ. تو یہ دنیا سے تو اوپر چلے جائیں گے. اچھا پھر وہاں ہمارا ہڈی ماس کا شریر ہوگا, آپ کو پیاس لگے گی پانی لاؤ, میں بہت سمے سے فرشتہ دنیا میں آ گیا, نہیں. تو لائٹ کا سروپ ہوگا, سمپورن سروپ ہوگا. سمپورن بنے بغیر تو کوئی فرشتہ بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی اپورن رہ بھی جائے تو اس کی پہلے دھلائی ہوگی, میلے کپڑے تو وہاں نہیں جا سکتے. اس لیے فرشتہ دنیا میں جائیں گے تو سب کیا ہوگے, تو بابا نے کہا چمکیلی ڈریس. ہم سب کی کون سی ڈریس ہوگی؟ چمکیلی ڈریس. بہت سمے پہلے بابا کی مرلیاں آئی ہوئی ہیں, ایک ہے داغ والی ڈریس اور ایک ہے چمکیلی ڈریس. تو بابا کہتے ہیں میں تم کو چمکیلی ڈریس دیتا ہوں, تم اس کو داغ والی ڈریس بنا لیتے ہو. تو وہاں تو داغ والی نہیں ہوگی, تو چمکیلی ڈریس, چمکتا ہوا چہرہ اور خوشی. تو پھر بابا نے جب ہم کو, جیسے کسی کو آپ خوشبودار گلاب جل کی پچکاری ڈال دیں, اس کے بعد اس کو کہیں کہ دیکھ تم کو گلاب جل کی سگندھ آ رہی ہے, وہ کہے گا آ رہی ہے. تو بابا نے ہم کو پہلے بٹھا کر کے, ایک آگر تو ہم تھے ہی کہ لاسٹ تھا, تو بابا نے ہم سب کو پہلے ہمارا فائنل روپ کا آئینہ سب کے سامنے لے آئے. جیسے کہتے ہیں نا, نارد جو تھا وہ سمجھتا تھا میں بھی برہما کمار ہوں, چلو لکشمی کو برمالا لے کے چلے جاؤ بچارہ. اچھا لیکن اس نے جب آئینہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ چپ چاپ چلا گیا. اس لیے بابا کہتا ہے کہ کل بابا نے ہم کو آئینہ دکھایا, کس کا؟ ہمارے اپنے اپنے فائنل فرشتہ روپ کا, یہ تم ہو. ٹھیک. پھر اس فرشتہ روپ کی جو کوالٹیز ہیں, مان لو بابا ساری سبا کو فرشتوں میں ٹرانسفر کر دے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, یہاں جب وہ سیریمنی ہوتی ہے تو سب کو کراؤن پہنا دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کا فوٹو دیکھو تو ہال کراؤن والوں سے سجا ہوا بڑا چمکدار لگتا ہے. ہم کو بھی پیورٹی کے لیے کبھی کبھی ایسے فوٹو آتے ہیں, پر ہم ڈالتے نہیں, हम समझते लोग क्या कहेंगे, ये क्या बना रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, रामलीला कर रहे हैं क्या। इसलिए हमको इसका महत्व पता है। तो बाबा कहते हैं सबका, और सबको जब फरिश्ता बना दिया, फिर बाबा ने हमारे फाइनल स्वरूप की महिमा शुरू की। इसमें क्या है, एक तो खुशी, एक मुस्कान। तो फिर बाबा ने कहा सब देखो, देखता हूँ। बाबा को ही रहे थे ना, बाएं देख रहे थे ना दाएं देख रहे थे ना पीछे देख रहे थे, पर बाबा ने हमको बताया कि सारे हॉल का क्या वातावरण है। आगे वाले बेचारों को तो दिखता ही नहीं पीछे क्या है, या तो स्टेज से दिखता है। सबसे अच्छी सीट इस हॉल में कौन सी है, क्या ख्याल है आपका? सबसे अच्छी सीट है लास्ट, क्योंकि वहां से आपको सब दिखता है कि आगे क्या हो रहा है, सारा दिखता है। या फिर स्टेज, यहां से सब दिखता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैंने सब का करा के फिर एक का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि जब फरिश्ते हो जाएंगे तो सारे फरिश्ते हैं, तो टोटल का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ेगा। पर ये सूक्ष्म शक्ति है, तो सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव का फरिश्ते रूप का थोड़े समय के लिए बाबा ने हमको अनुभव कराया। आप सबने किया, थोड़े समय के लिए जिसको फील हुआ कि हम सचमुच उस समय सब कुछ भूलकर अपनी संपन्न फरिश्ता स्टेज का अनुभव कर रहे थे, वो जरा हाथ उठाओ। बाबा देख रहा, नहीं तो बाबा कहेगा क्या कर रहे थे, नहीं तो सभी कर रहे थे। तो अब हम इस मुरली को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ताकि जो बाबा ने कल कहा, जो अनुभव कराया, उसको हम दोबारा करें। तो सबसे पहले बाबा ने हमको लंबी साइलेंस कराई थी, पर हम केवल 2 मिनट साइलेंस करते हैं, उसी तरह की जैसे कल हमने की थी।
में तुमको आना है, शिव
अब हम वर्ड बाय वर्ड बाबा की मुरली को रिवाइज करते हैं। पहली बात, ये स्थूल बात है कि ये मुरली बाबा ने 20/3/17 को चलाई है, ठीक है। सबको याद रहे कि ये मुरली बाबा ने 20/3/17 को चलाई है। इसका आसान तरीका क्या है कि 20/3/17 में 0 से लेकर 7 तक आते हैं। 20 में 0 है, 17 में 1 है, 20 में 2 है, 3 तो है ही महीना है, फिर 3 और 1 4 है, 3 और 2 5 है, 3 और 1 4 और 2 6 है, और फिर 7 है। इसको घर जाके विचार करना तो आपको ये मुरली सदा याद रहेगी कि ये 0 से लेकर 7 तक है। अब मुरली का टाइटल जिसमें सार होता है, तो सार क्या है जो हमने अभी 2 मिनट में अभ्यास किया? अपने साधारण स्वरूप को बदली करके थोड़ा समय भी संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करके देखो। ये आपका बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला रूप। अगर हम हर एक व्यक्ति को अपना कौन सा चेहरा पसंद आता है, चिंता में पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, उदास, या के मुस्कुराता हुआ चमकीला स्वरूप? क्योंकि बाबा कहते हैं आपका चेहरा सेवा करे। देवताओं की मूर्तियों के आगे लोग क्यों जाके नमन करते हैं? उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होता है। और ब्राह्मणों का चेहरा क्या होता है? कभी मुस्कुराता हुआ, कभी कम मुस्कुराता हुआ। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण से हमको अगली स्टेज में जाना है, इसलिए अगर सदा हम अपने इस लौकिक शरीर में, ब्राह्मण शरीर में अपना फरिश्ता स्वरूप प्रकट करके काम करेंगे तो आपको अपना बहुत ही अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला स्वरूप हर वक्त अनुभव होगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मैं देख रहा हूं कि सब मुस्कुरा रहे हैं। एक तो होती बनाई हुई मुस्कुराहट, एक अंदर की मुस्कुराहट। अब आगे चलिए, बाबा कहते हैं इतने हजारों बच्चों में भी मैं किन बच्चों को विशेष देख रहा हूं? ओम शांति। आज बाप दादा विशेष जो योग युक्त बच्चे सबके बीच योग युक्त बनकर सारे योग में बैठे हैं, लेकिन सबके बीच योग युक्त बनकर औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उनों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? सब बैठे हैं, उसमें कई बहुत योग युक्त बैठे हैं, तो जो बहुत योग युक्त बैठे हैं उनके वाइब्रेशन से दूसरों का भी योग लगने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कई तो योग लगा रहे हैं, कई दूसरों को भी योगी बना रहे हैं अपने योग युक्त स्थिति से। तो सबके बीच योग युक्त बनकर औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। अब उनकी बाबा क्या तारीफ कर रहे हैं और दिल में ही बहुत बहुत प्यार भरी, दिल के प्यार की यादें बहुत प्यार से दे रहे हैं, यानी प्यार की याद को भी और प्यार से दे रहे हैं। तो जिसने ऐसा अनुभव किया होगा कि मैं इतना योग युक्त होके आत्मा बैठी हूँ, तो दूसरों के भी वाइब्रेशन से उनके मन को एकाग्र कर रही हूँ, उनको बाबा का ऐसा अद्वितीय याद प्यार मिला। बाप दादा यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठें। बाबा को क्या पसंद है? अकेला योग नहीं, अकेले योग में तो आपकी अपनी शक्ति काम करेगी। अब इकट्ठे बैठे हैं तो जो ज्यादा पावरफुल योग लगा रहे हैं वो आपको मदद कर रहे हैं आपके योग लगाने में, है ना? जैसे किसी ने कोई बोझ उठाना हो, उठाना तो उसने है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको हेल्प कर देता है उठाने में तो इजी हो जाता है। इसी प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाप दादा चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठें और योग में भी ऐसे योग की स्टेज, योग में इकट्ठे बैठे, योग में भी ऐसे योग की स्टेज प्रैक्टिकल में हो, तो ये देख बाप दादा बहुत खुश है कि योग में इकट्ठे बैठे हैं और योग में भी बैठे हुए में अपनी स्टेज ऐसी प्रैक्टिकल में पावरफुल योग की हो जो सारे वाइब्रेशन को और भी शक्तिशाली बनाए। जैसे बाप देख देख कर हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बाप को मुस्कुराते हुए देखकर बहुत दिल से खुश होके रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ? कि बाबा सामने सब बच्चों को देखकर, संगठित योग लगाते हुए देखकर, उसमें भी जो बच्चे विशेष योग लगा रहे हैं, पहले तो सबको देखकर खुश हो रहे हैं कि सारे बच्चे इस समय अपनी सुध बुध भूलकर बाबा की याद में बैठे हैं, और उसमें भी कोई कोई जो हैं और भी ज्यादा पावरफुल याद में बैठे हैं, तो उस सब को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे भी, बाकी सब देखने वाले बाप को मुस्कुराते हुए देखकर दिल से बहुत खुश हो गए, होकर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा ने सबकी खुशी, सबको देखकर खुशी बाबा के फेस पर आई, अब बच्चों ने हर एक ने बाबा को देख करके, बाबा मुस्कुरा रहा है बड़ा खुश है, उनको भी खुशी आ गई। यानी सबकी पिक्चर इकट्ठी होकर बाबा के द्वारा वो देख रहे हैं और फिर उसका रिस्पॉन्ड खुशी में दे रहे हैं। आप किसी को मुस्कुरा के देखोगे वो भी नेचुरली मुस्कुराएगा। तो हमने कैसे देखा सबकी मुस्कुराहट को? बाबा के द्वारा। अभी भी सभा की रौनक बहुत अच्छी, मुस्कुराने वाली, देख देख बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ कि वैसे तो अकेले बच्चों का योग उतना लगातार लगे ना लगे, लेकिन बाप को मुस्कुराता हुआ देखकर और अपना सर्टिफिकेट पाकर कि सब बच्चे बाबा कह रहा है देखो प्यार से योग में बैठे खुशी होती है ना, तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों के अंदर वो प्यार की झलक रिस्पॉन्ड क्या हुआ कि बच्चों का प्यार युक्त योग जुट गया। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं ना, बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो जब बाबा किसी भी तरीके से बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, जैसे कोई स्क्रीन में या शीशे में बहुत सुंदर चीज देखे तो उसको मुस्कुराहट आएगी ना, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, सूक्ष्म जो कुछ चल रहा है आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं। बच्चों की मुस्कुराहट और बाप की मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों की जब मुस्कुराहट मिल जाएगी तो क्या सीन था, आपने सब बैठे बैठे अनुभव किया। बाप दादा जो देखने चाहते थे वे चारों ओर देख करके बाप भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी बाप ने जो सूक्ष्म में साइलेंस में जो कुछ किया और करवाया और उसको देखकर बाबा कहते हैं चारों ओर वो फैल गया है, उसको देखकर बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। और सारी सभा में बाप बच्चों को मुस्कुराते हुए देखकर अभी तक भी दिल में मुस्कुरा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि बाबा प्रैक्टिकली अब तक जो मुस्कुराहट देखी, तो कई बार आप देखते हैं ना आप बहुत मुस्कुराते हैं वो सीन दूर हो जाता है, फिर भी आपके दिल में उसका टेस्ट रहता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ देखकर बाप की बच्चों की बाबा कहते हैं अभी तक भी दिल में बाबा मुस्कुरा रहा। तो हमको अभी क्या करना चाहिए, इस मुरली को रिवाइज करते हुए हमें भी अभी तक वो सीन सामने लाके क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक। और वो मुस्कुराहट मैं कईयों के चेहरे पर देख रहा हूं, हो सकता है सबके चेहरे पर हो, है बहुत अच्छा। वाह बच्चे वाह, अब देखिए बाबा ने सार बताया है। कमाल है गुप्त ताकत और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये सारा काम गुप्त हुआ लेकिन उस ताकत सूक्ष्म वाइब्रेशन की और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं और बच्चों तक वो अनुभव पहुंच गया है। बाबा कहते कमाल है, हर एक बाप का बच्चा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जो हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है। जब दिल से कोई मुस्कुराता है तो उसके चेहरे पर क्या आता है, सबसे बड़ा जेवर या सबसे बड़ा आभूषण या सबसे बड़ी सुंदरता क्या है, मुस्कुराहट। और आज दुनिया मुस्कुराना भूल गई है, नकली क्लब बना के हंसते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि बाबा ने जो करवाया ताकत गुप्त ताकत वो सब बाबा के बच्चों ने अनुभव किया। हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है, तो चमक है खुशी की। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बाप भी कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ बाबा ने सबको उनकी मुस्कुराहट का सर्टिफिकेट दे दिया, कितनी खुशी की बात है। आप एक हाथ की ताली बजा सकते हैं, दो हाथ की नहीं, ये सूक्ष्म बात हो रही है। अच्छा अब आगे चलिए। तो बाबा ने सारा कहने के बाद क्या कहा, आज की सभा, आज की सारी सभा मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है। मुस्कुरा कौन सकता है जिसको फिक्र ना हो, और जिसको बिल्कुल कोई फिक्र ना हो उसको क्या कहा जाता है, बेफिक्र बादशाह। اگر فکر ہو گئی بادشاہ کو بھی تو بادشاہ رہا، اور فقیر کو بھی بے فکر ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ اس لیے بابا کہہ رہے ہیں سبا کو دیکھ کر، اس سمے یہ ساری سبا بے فکر بادشاہوں کی ہے۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کسی کو نشہ چڑھ جاتا ہے نا، تو نشے میں اس کو کچھ نہیں پتا لگتا، دن ہے رات ہے میں کہاں ہوں بس۔ تو بابا کہتے ہیں یہ بے فکر بادشاہ میں نے آپ کو دیکھا۔ تو بابا کیا کہہ رہے ہیں، میجورٹی مسکراتے ہوئے بے فکر بادشاہوں کی ہے، جو دور سے ہی مسکراتے ہوئے چہرے بہت سندر دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کل بھی لوگ مسکراتے ہیں فوٹو کھچوانے کے وقت، یہ سوچتے ہیں کہ میرا مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ کئی فوٹوگرافر تو بول دیتے ہیں مسکراؤ، آج کل کلجگ ہے بولتے ہیں نہ مسکراؤ تو وہ زیادہ مسکراتے ہیں۔ پرنتو بابا کہتا ہے کہ یہ مسکراہٹ والی فوٹو بابا نے لی ہوگی ہماری، ہم کو بھی اپنی یہ فوٹو پاس رکھنی چاہیے۔ پھر بابا کہتے ہیں آپ بھی ایک دو کو اسی روپ میں دیکھ رہے ہو نا، اگر ہم خود بے فکر مسکراتے رہیں اور دوسروں کو بھی مسکراتے ہوئے روپ میں دیکھتے رہیں تو کیا ہوگا، سب کے گنی گن دکھائی دیکھیں، اتنے گنوان دیوتا فرشتے بن جائیں گے۔ اگر نہیں مسکراتے تو کیوں ہوتا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی سامنے آ گیا آپ کو اس کا اوگن دکھائی دی، آپ کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بابا کہتا ہے کہ فرشتہ مسکراتا رہے، دوسروں کو بھی مسکراتا دیکھتا رہے تو مسکراہٹ پرماننٹ ہوگی۔ سار کیا نکلا، پرماننٹ مسکراہٹ کا کیا طریقہ ہے کہ نہ کیول خود مسکراتے رہو، وہ ٹیمپرری ہو جائے گا، دوسروں کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھو، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں تو مسکراہٹ کی مسکراہٹ ہوگی تو کمیاں ختم۔ سبھی ایک دو کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اب اور دیکھیے بابا دھیرے دھیرے ہم کو گہرائی میں لے جا رہا ہے۔ سبھی ایک دو کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بہت پہچانے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، ویسے تو اجنبی لگتے ہیں، کوئی گجرات سے آیا ہوگا کوئی کہیں سے، لیکن بابا کہتا ہے یہ جو تمہاری اس فرشتہ کی اسٹیج ہے، فرشتہ سب کو پہچانتا ہے، فرشتہ کے لیے کوئی انجانا نہیں ہوتا۔ اس لیے بابا کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے پہچانے ہوئے۔ جب آپ کل بیٹھے مسکرائے رہے تھے تو آپ کو کیسے لگا ہم پہچانے ہوئے لگتے ہیں، یہ سب کیسے لگا؟ موٹے روپ میں 5000 برس پہلے بھی یہ سبا لگی تھی اور اس میں ہم سب مسکرائے تھے۔ اگر وہ یاد آ جائے تو پہچانے ہوئے لگیں گے کہ نہیں، 5000 پہلے بھی میرے ادھر یہی بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے، تو پرانی پہچان ہے نا۔ لوگوں کو جان پہچان دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ بابا کہتے ہیں تم کل پہلے کو یاد کرو تو تمہیں کوئی نئی چیز لگے گی نہیں، کوئی نیا نہیں لگے گا۔ آج کی سبا وشیش مسکراتی ہوئی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، زیادہ مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ اب سنیے کارن۔ سب کے من میں ایک ہی ساز ہے، جیسے میوزک ہوتا ہے نا، وہ کیا ساز ہے؟ بابا خود کے لیے کہہ رہا ہے، دیکھو بچوں کو کہنا ہے، کیا ساز ہے؟ میٹھا بابا پیارا بابا۔ تو آپ ذرا کہیے اس کو، تو بابا کیا ساز ہے ہمارے من میں؟ میٹھا بابا پیارا بابا۔ پھر بابا کہتے ہیں سب کے مخ کے اشارے سے، اس وقت بول نہیں رہے تھے لیکن کئی بار ہوتا ہے چہرہ بولتا ہے، مکھ کیا بول رہا ہے؟ سب کے مکھ کے اشارے یہی بول رہے ہیں، یعنی بول نہیں رہے لیکن بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा, बाबा ने खुद बोल के दिखाया, ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। फिर बोलिए, क्या हमारे मुख बोल रहे हैं? ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि ये रूप जो है बच्चों का, आज इतनी मुस्कुराती हुई सभा, भले बाबा ने हमारे अंदर पैदा किया है, आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं जो हर एक से मीठे बाबा प्यारे बाबा, यही फीलिंग आ रही है बाबा को, ये दिल में प्यार भी उभर गया है। लास्ट वाला चेहरा भी देखो तो आज इसी विधि में है। बाबा ने हमको ऐसी अनुभूति कराई है, बाबा कहते हैं जो लास्ट वाला भी बैठा है वो भी इसी विधि में है, वो भी उसके दिल से मीठा बाबा प्यारा बाबा निकल रहा है। अब लास्ट के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो सभा में लास्ट और एक प्रसारत में लास्ट। कोई भी हो, बाबा कहते उसके अंदर से भी ये निकल रहा है। अच्छा, तो आज जहां तक रात को जागेंगे, अब देखिए जहां तक रात को जागेंगे यानी उसका असर, जैसे फ्रिज से कोई चीज निकालो तो काफी समय ठंडी रहती है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आज जहां तक रात को जागेंगे वहां तक सब एक दो को देख करके जैसे मीठा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट होती मीठी है, आप एक एक ये बाबा का और सभा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, सोने तक आपको वो सीन रात को रहा याद या खीर पीने में लग गए हैं? क्योंकि खीर भी डिस्टर्बेंस कर देती है। गुजरात वाले कह रहे थे खिचड़ी कहाँ है? अच्छा, तो बाबा कहते हैं एक ये बाबा का और सभा का हरे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, इस कोने में आपका बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख देख सारी सभा में भी उसका प्रभाव है। बाबा ने कहा वहीं कोई भी किसी कोने में बैठा था, उसका मुस्कुराहट का प्रभाव भी सारे हॉल में पड़ रहा। आप आगे भी सुन लीजिए, चाहे अवस्था कैसी भी हो उस मौके पर, चाहे अवस्था कैसी भी हो, लेकिन अभी सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी दुखी व्यक्ति को भी कोई सुख की सूचना मिल जाए वो दुख को भूलकर मुस्कुराने लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं परमानेंट अवस्था आपकी कैसी भी हो, लेकिन इस वक्त सबका मुस्कुराता दिख रहा है। सबका चेहरा ऐसे मुस्कुरा रहा है जो एक सेकंड में सारी सभा बदल गई है। जैसे अभी सबको कोई कहे ताली बजाओ तो एक सेकंड में सब ताली बजा देते हैं ना, रूप बदल जाता है सभा का। बाबा के अच्छा सब एक सेकंड में मुस्कुराओ तो मुस्कुराते हुए सभा लगेगी कि नहीं, कोई फोटो लेगा? तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली वो जैसे कि सबकी शक्लें बदल गई। फिर आगे देखिए, कोई कैसा भी हो लेकिन बाबा उसे बदलकर, अब ये भी सुनिए क्या क्यों हुआ ये, कोई कैसा भी हो लेकिन बाबा उसे बदलकर सबका वही चेहरा दिखा रहे हैं जो फाइनल मुस्कुराता हुआ। सबकी शक्लें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, हर एक की शक्ल जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही आज आप भी ऐसे चमकते हुए दीपक दिखाई दे रहे हो। जब संदेशियां जाती हैं सूक्ष्म वतन में तो उनका वहां कौन सा चेहरा दिखाई देता है? वो सूक्ष्म वतन वाला दिखाई देगा कि नहीं? जैसे जैसा देश वैसा वेश, तो अगर सूक्ष्म बतल में जाएंगे तो आपका फरिश्ता चेहरा देखेंगे, पर लोक में जाएंगे तो आपका आत्मा दिखेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा मुख से बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कल बाबा ने 1.5 घंटा मुरली चलाई है, शब्द उसके बहुत थोड़े हैं, तो धीरे धीरे बोल रहा है। हर एक बच्चा ऐसे चमकती हुई सूरत और मूरत से जैसे अभी चित्र में दिखाई देते हैं, ऐसे ही चमकते हुए सितारे बहुत अच्छे चमक रहे हैं, क्योंकि हर एक इस चमकते हुए सितारे की चमक बहुत सुंदर है। चमक भी है, सुंदरता भी है। क्यों? क्यों कि हर एक बच्चा अपने चमत्कारी सूरत में दिखाई दे रहा है। जैसे कोई सज धज के दिखाई देता है तो फर्क पड़ जाता है ना शारीरिक तौर पे, ऐसे बाबा को बच्चों का वो चमकीला स्वरूप हर एक का पर सूक्ष्म लोक का दिखाई दे रहा है। ये चित्र है तो आपका ही, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सितारा अभी जैसे पहले दिखाई दे रहा था, ऐसे सफेद चमकता हुआ साधारण रूप नहीं लेकिन चमकता हुआ फेस, वह सभा बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ने शक्ति देकर जो चमकाया, सब चमक रहे हैं। फिर जैसे सारे दीपक जल रहे हों तो अच्छा लगता है, उसमें एक दीपक भी ना जल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं था है जिसमें चमक ना हो, क्योंकि अभी सब बाबा को चमकता हुआ देख रहे हैं, ऐसे ही बाप समान सारी सभा चमक रही है। बाबा का देख करके अपने ऊपर असर रूप आता है ना, तो बाप दादा सुनाते हैं सारी सभा ऐसे बैठी थी जैसे पता नहीं कोई सचमुच ऊपर से फरिश्ते इस धरनी पर पहुंच गए। हम सबके ऊपर का फरिश्ता रूप अगर धरती पर आ जाए तो कैसा लगेगा, वो बाबा ने देखा और दिखाया। ये रूप आपका भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि अभी और कुछ भी नहीं है, सभी संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं। तो जब संपूर्ण मूर्ति हो जाएंगे तो आपका प्यारा ही लगेगा। और ये रूप कईयों को दिखाई दे रहा है, सबको नहीं दे रहा लेकिन जो सूक्ष्म देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है। हमको भी, ये दादी कह रही हैं, गुजार दादी, हमको भी बाबा आपका, हमको भी बाबा आपको फरिश्ता रूप में दिखा रहा है। क्या मतलब हुआ कि जब बाबा आते हैं तो दादी की आत्मा तो शांत हो जाती है ना, पर अब दादी कह रही हमको भी बाबा आपका वो फरिश्ता रूप दिखा रहे हैं। हर एक पूज्य समान दिखाई दे रहे हैं। फरिश्ता रूप होगा तो पूज्य बनेंगे। अभी तो ज्यादा समय नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दादी कहती है कि मैं फिर लुप्त हो रही हूँ, तो इसी फरिश्ते रूप में 1 सेकंड में जैसे पहले इमर्ज हुए थे, ऐसे ही फरिश्ते रूप में अभी अभी दिखाई रहे। बीच में दादी आई, दादी को दिखाया, फिर वापस चली गई। अब कहती फिर वही रूप आपका दिखाई दे रहा। सारी सभा यहाँ आके देखो तो कितने में बदल गई है। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे? अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सब इतने, कौन सा ताज? रोशनी वाला, वो दूसरा नहीं। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे? तो फिर बता रहे हैं जैसे अभी गुप्त मर्ज रूप में है, इसी को ही इमर्ज रूप में देखेंगे। अभी गुप्त फरिश्ते हैं, जब बन जाएंगे तो फिर सूक्ष्म वतन में यही रूप जो अब देख बाबा ने दिखाया ये वहां इमर्ज हो जाएगा। सारी सभा देखो कितनी चमकीली नजर आ रही है, कोई टेढ़ा हो बांका हो सब चमक रहे हैं और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। किस चीज में टेढ़ा बांका है, किस चीज में? शरीर में नहीं, वैसे प्रसारत में। लेकिन इस समय बाबा कहता अपने फाइनल रूप में है, सब चमक रहे हैं और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। क्या पसंद है? अपना चमकता हुआ फरिश्ता रूप पसंद है ना, सेकंड में चमकीले बन गए। सारी सभा देखो चमकीली है, अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। ऐसा चमकीला अपना स्वरूप देख देख कर बहुत खुशी हो रही है। तो ये अभी का स्वरूप चमकने वाला, अब ये थोड़े समय के लिए बाबा ने अमर्ज करके दिखाया कि ऐसे आप सभी फरिश्ते हैं ही। उसी फरिश्ते रूप में बाबा ने आप सबको दिखाया, सेकंड में बदल गए। सारी सभा चमकीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है, तो अपनी शक्ल आप देखो कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि संपूर्ण है। तो हम सबकी संपूर्ण रूप बाबा ने हमको दिखाया, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी साधारण रूप बदल के फरिश्ता रूप देख रहे हैं ना, आगे पीछे क्या दिखाई देता है, फरिश्ता। और सारी सभा कितनी चमकती हुई दिखाई दे रही है, साधारण रूप किसी का भी नहीं है, सभी का ये एक ही जैसा फरिश्ता रूप दिखाई दे रहा है। बाकी अंदर भले इसका कितना भी फर्क है, वह तो वो खुद ही जाने, इसमें हम क्यों जाएं। बाबा कहते आज अंदर का नहीं देख रहे, हमको तो सिर्फ अपना फरिश्ता रूप है वो खास दिखाना है, एकदम फरिश्ता। तो देखो फरिश्ते रूप में जब चेंज होते हैं तो कितनी सभा बदल जाती है, वह स्वयं ही आपका फरिश्ता रूप इमर्ज हो गया। तुम्हारे ही चमकता हुआ ये स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा, ये भी बाबा ने कह दिया। जो मैंने अभी अनुभव कराया है खुशी का, फरिश्ते का, मुस्कुराहट का, ये बाबा ने अपनी शक्ति से कराया है, थोड़ा समय आपके पास रहेगा। तो अपना ये फरिश्ता रूप पक्का हो गया, हर एक ने अपना फाइनल रूप फोटो रख लिया, मैं फरिश्ता स्वरूपधारी हूँ, थोड़ा समय इसमें अनुभव करके देखो कितना मीठा स्वरूप है। अभी बाबा अब बाबा वरदान दे रहे हैं, अभी बाबा फरिश्ता भव का रूप प्रकट करता है, अर्थात फरिश्ता बनो। अभी एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में साधारण, ये प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन ही जाएंगे। तो बाबा ने क्या आसान काम दिया, अब इस दुनिया में साधारण रूप भी है फरिश्ता रूप भी है, लेकिन एक सेकंड में साधारण, एक सेकंड में फरिश्ता। इसका अभ्यास करेंगे तो करते करते फाइनल फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी फरिश्ते रूप में रहना, ज्यादा समय फरिश्ते रूप में, अभी तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ता अभी साधारण, फिर क्या करना होगा, डबल बारी फरिश्ता एक बारी साधारण। ऐसे करते करते इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता रूप ये कुछ समय तक आपका रहेगा, ये फरिश्ता रूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। धीरे धीरे अभ्यास होगा, हैं यहाँ हैं फरिश्ते, आप भी अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि ये फरिश्ता रूप कितना अच्छा है। जब आप फरिश्ता रूप में होंगे आपको और अनुभव होगा, साधारण में होंगे और अनुभव होगा। तो जितना फरिश्ता रूप में रहना चाहो उतना समय रह सकते हो यहाँ, लेकिन वह सूक्ष्म वतन का फरिश्ता रूप जो है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन ये फरिश्ते की लाइफ है लाइफ में, पर फरिश्ता है ये इस वक्त ये है। अच्छा, तो ये मुरली पूरी हुई, सब ने अपने अपने अनुसार इसको अनुभव किया। बाबा ने होमवर्क क्या दिया कि वो फरिश्ता तो फाइनल है, देवता तो फाइनल होते हैं लेकिन यहाँ गुण धारण करते हैं, तो यहाँ हमने शरीर में रहते हुए अपना फरिश्ता रूप धारण रखना है। अभी बोलना पड़ता है स्टेज पर, आज मौन का दिन है, आज सब चुप रहो, वो ना बोलना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। ओम शांति।
मधुबन में जो किया है, मधुबन में।